नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम डॉक्टर लुका की विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत हम बीमारियों के विषय में चर्चा करते हैं और साथ ही इसके उपचार के विषय में भी बताया जाता है, और हमें विश्वास है कि इसके द्वारा आपको काफी जानकारी मिल रही है। आज हम देखेंगे कि डॉक्टर लुका प्रारंभिक खाद्य समूह के विषय में क्या बताते हैं। आइए सुने डॉक्टर लुका की ये वार्ता।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डॉक्टर लुक हम सबके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। वह बताएंगे कि मूल आहार में क्या क्या आता है और उसे कैसे काम में लिया जाता है। संसार का हर एक मनुष्य प्रतिदिन भोजन करता है, इसलिए आवश्यक है कि वह अपने आधारभूत भोजन से पर्याप्त पोषण कैसे प्राप्त करे, ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर एक युवा माता की कहानी बताते हैं। रूपा एक 35 वर्ष की माता थी जो काम पर जाती थी। उसके और उसके पति के पास एक 8 वर्ष की पुत्री थी, उसका नाम जेनी था। रूपा के पास बहुत काम था, जैसे नौकरी पर जाना, घर का सब काम करना, अपनी बेटी को नृत्य एवं संगीत सिखाना। उसके पास तो खाना बनाने का भी समय बहुत कम था, जबकि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी मोटी हो रही है। उसने जेनी से पूछा कि क्या वो बाहर का खाना तो नहीं खा रही है। जेनी ने अपनी माँ को उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका वजन क्यों बढ़ रहा था? वो चिंतित हो उठी, क्योंकि उसने इस आयु में बच्चों के मोटे होने के दुष्प्रभाव के विषय में सुना था। मित्रों, अब रूपा क्या करे? रूपा इस समस्या के बारे में सोचती रही। एक दिन उसकी भेंट एक सहेली से हुई। उसने उससे इस विषय पर चिंता व्यक्त की। उसकी सहेली ने कहा, वह आवश्यकता से अधिक चिंता कर रही है। परंतु यह जानकर कि रूपा उस समस्या को लेकर कितनी अधिक चिंतित थी, उसने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। रूपा की सहेली ने एक अस्पताल के बारे में सुना था, जहां भोजन के बारे में शिक्षा दी जाती थी। वहां की जानकारी लेकर और उनसे फोन पर बात करने के बाद रूपा और उसकी सहेली ने निर्णय लिया कि निश्चय ही वो वहां जाएंगी और शिक्षा प्राप्त करेंगी। इसलिए दोनों ने कक्षाओं में जाना आरंभ किया। उस अस्पताल के बाल विशेषज्ञ कक्षा ले रहे थे। उन्होंने आरंभ में ही कहा कि अधिकांश जन नहीं जानते कि भोजन वस्तुओं का शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए वे ना तो जिज्ञासु हों और ना ही अपने आप को निर्बुद्धि समझें। यह सुनकर रूपा को सांत्वना मिली, क्योंकि वह तो यह सोच रही थी कि उन 50 सदस्यों की कक्षा में वही इस विषय में अज्ञानी थी। इससे उसे प्रश्न पूछने का साहस हुआ। बाल विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि भोजन पदार्थों के 3 मूलभूत वर्ग होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, तथा तीसरा वर्ग है फल एवं सब्जियां। रूपा ने इसके उदाहरण देने का उनसे निवेदन किया तो डॉक्टर ने कहा कि मांस का कोई सा भी हिस्सा हो, वो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को लोग प्रायः रोटी ही समझते हैं। वसा तो सीधी वैसी ही है जैसे फल एवं सब्जियां। डॉक्टर ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि यह प्रश्न उसकी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ व्यक्त इन 3 भोजन वर्गों का क्या काम है? पहली, प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर विकसित होता है। बच्चों के लिए प्रोटीन विशेष करके अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म से 18 वर्ष की आयु तक मनुष्य का विकास चरम सीमा पर होता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। डॉक्टर ने फिर कहा कि बच्चों के लिए यह अत्यधिक आवश्यक तत्व है। अंतिम वर्ग है फल एवं सब्जियां। उनका मुख्य कार्य है हमारे शारीरिक विकास और हमारी रक्षा करना। डॉक्टर ने इसे संक्षेप में कहा, ग्रो, गो एंड ग्लो। रूपा ने सोचा कि यह तो स्मरण करने हेतु बहुत आसान है। इस समय डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें 1 घंटे का अल्पाहार का समय दिया जाता है। रूपा और उसकी सहेली खाने के लिए पास के रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने कक्षा में दी गई शिक्षाओं पर विचार करके कहा कि वह अच्छा था, और अच्छा हुआ कि वे वहां गए। उन्हें उससे बहुत सहायता मिली थी और वे दोनों प्रसन्न थी। रूपा की सहेली ने उससे एक प्रश्न पूछा। रूपा की मित्र जानती थी कि वह बहुत व्यायाम करती है, उसका शरीर चुस्त है और वह भाग दौड़ भी बहुत करती है, परंतु क्या उसके शरीर में रौनक थी? रूपा इस प्रश्न पर चकित तो हुई, परंतु उत्तर देने से पूर्व वह स्वीकार कर रही थी कि उसके अधिक रौनक नहीं थी। उसने अपनी सहेली से पूछा कि उसने यह प्रश्न क्यों पूछा है। उसकी सहेली ने कारण बताया कि उसके जीवन में जो आनंद वर्षों पहले दिखाई देता था, वह अब नहीं दिखाई देता है। रूपा की सहेली ने उसे बताया, एक ऐसा मनुष्य है जिसने उसके जीवन में ऐसा आनंद दिया है जैसा उसके पास पहले कभी नहीं था। यह मनुष्य प्रभु येशु था। रूपा की सहेली उसे बताती चली गई कि उसने कैसे येशु को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसे बाइबल से मत्ती उसके 6:25, 27, 33 और 34 पद पढ़कर सुनाया, जहाँ इस प्रकार लिखा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। उसकी सहेली ने उससे बाइबल का एक और संदर्भ पढ़कर सुनाया, जो कि भजन संहिता 90:13-17 में है। हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हमारे हाथों के काम हमारी संतान को भी लाभ पहुँचाते हैं। मित्रों, परमेश्वर ऐसा करता है। अब उन्हें ये बोध हुआ कि कक्षा में जाना महत्वपूर्ण है, इसलिए वे कक्षा में तो लौट आए, परंतु रूपा इस मनुष्य प्रभु येशु के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। कक्षा के दूसरे सत्र में डॉक्टर ने विभिन्न भोजन वर्गों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दी। पहले डॉक्टर ने प्रोटीन या विकास करने वाले तत्वों के विषय में जानकारी दी। उसने कहा कि आपको अपने बच्चों के शरीरों को एक इमारत के समान देखना होगा, तदोपरांत आपको इस इमारत में निर्माणकर्ताओं को लाना होगा जो इमारत के विकास में सहायक हों। यदि आप बच्चों को ऐसा भोजन ना दें जिससे उनका विकास हो, तो बच्चे का विकास रुक जाएगा। रूपा को उसके ग्रामीण क्षेत्र के अनेक लोगों का ध्यान आया जो कद में छोटे थे। दूसरा पोषक वर्ग है कार्बोहाइड्रेट्स या वसा या काम करने वाला भोजन। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, डॉक्टर ने कहा। अब एक कार या एक साइकिल के बारे में सोचें। यदि हम कार का पेट्रोल निकाल लें या साइकिल पर अपने पैर ना मारें, तो आपने कार या साइकिल की ऊर्जा समाप्त कर दी। ऐसा ही काम के खाने वाले भोजन के साथ होता है। उनके बिना बच्चे की ऊर्जा सामान्य से कम हो जाती है। ऐसा भोजन खाने से बच्चे में ऊर्जा का भंडार बना रहता है। अंत में फल एवं सब्जियां, जो शरीर को क्रांतिमय बनाती हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक बाड़े के बारे में सोचें। हम सुरक्षा के लिए बाड़ा बांधते हैं। यदि आप बाड़ा हटा लें तो पशु एवं अनावश्यक मनुष्य घुसकर जान माल को हानि पहुंचा सकते हैं। मित्रों, सुरक्षा के लिए बाड़ा अति आवश्यक है। ये क्रांति देने वाले भोजन ऐसे ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके अभाव में बच्चे बार बार बीमार होते हैं और ये भोजन बच्चों को रोगों से बचाता है। रूपा ने सोचा, यह तो बड़ी आसान एवं सुबोध बात है। अब उसकी समस्या थी कि दिन में कितनी मात्रा में यह सब बच्चों को दिया जाए। उसने हाथ उठाकर यह प्रश्न पूछा। डॉक्टर ने कहा, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने कहा, 3×3 सोचिए, अर्थात दिन में 3 बार खाना खाना, प्रत्येक भोजन में 3 पोषक वर्गों का भोजन होना, इसे संतुलित आहार कहते हैं। डॉक्टर ने पूछा, प्रत्येक भोजन में प्रत्येक पोषक वर्ग का कितना अंश होना चाहिए? प्रत्येक वर्ग की लगभग 1 कटोरी या 2 कटोरी मात्रा हो। जब बच्चा बहुत अधिक खाता है और व्यायाम नहीं करता है तो वह मोटा हो जाता है। कभी कभी बच्चे के मोटे होने के पीछे रोग भी होते हैं, परंतु वे सामान्य नहीं होते, और यदि हो तो उनका निदान भी आसान है। प्रिय मित्रों, प्रश्नोत्तर के कुछ समय बाद कक्षा समाप्त हुई। रूपा एवं उसकी सहेली के विचार में उन्होंने अपने परिवार के स्वस्थ जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। वहां से निकलने के बाद रूपा ने अपनी सहेली से येशु के बारे में और अधिक पूछा। उसकी सहेली ने कहा कि यदि हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंधों में बने रहें तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। रूपा ने पूछा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी सहेली ने कहा, पहले तो हमें यह स्वीकार करना है कि हमने पाप किया है अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में जो अनुचित है वह काम किया है और इसी के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। उसने उसे बाइबल से गलातियों उसका 3:22 पढ़कर सुनाया, जहां इस प्रकार लिखा है, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन करा दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। इस पद से स्पष्ट है कि हम सब ने अर्थात संपूर्ण संसार ने पाप किया है। मित्रों, यही नहीं, हम पाप के दास वरन उसके बंदी हैं, तथापि हम विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आते हैं और हमें प्रभु यीशु की मित्रों प्रतिज्ञा प्राप्त होती है। जब हम प्रभु यीशु को और अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें नया जीवन प्राप्त होता है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मित्रों, ये नई सृष्टि हमारा नया जीवन है। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु ने यह भी कहा कि वह हमें अनंत जीवन देगा। यूहन्ना 3:16-17 में यीशु ने स्वयं कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। रूपा ने सोचा कि यह एक महान बात है, आज वरन सदा के लिए नया जीवन, आह यह तो अद्भुत एवं अविश्वसनीय बात है। उसके पापों ने उसे परमेश्वर से दूर क्यों कर दिया था? उसकी सहेली ने उसे एक और बाइबल अंश पढ़कर सुनाया, कुलुसियों 1:21-22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंग और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु यीशु ने अपनी देह में हमारे पाप उठा लिए और हमें क्षमा मिल गई है। अब हमें पापों का बोझ नहीं उठाना है। रूपा की सहेली ने उससे पूछा कि क्या उसे प्रभु यीशु के द्वारा यह नया जीवन चाहिए? रूपा ने कहा कि निश्चय ही उसे चाहिए था। उसकी सहेली ने कहा, वह उसके पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराए और प्रत्येक शब्द पर ध्यान दे। इसलिए उसने उसकी सहेली के साथ यह प्रार्थना की, प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं जानती हूँ कि मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और फिर मृतकों में से जी उठा और वह जीवित है, वरन अनंत काल के लिए जीवित है। मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे जीवन में आएं और मुझे पापों से बचाएं। मैं प्रभु यीशु के नाम में यह मांगती हूँ, आमीन। मित्रों, इस प्रार्थना के बाद रूपा में प्रभु यीशु में नया जीवन आ गया। अब उसमें अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करने का एक नया उद्देश्य और आनंद था। यदि आप रूपा की नाई केवल प्रभु यीशु से कहें और उसकी प्रार्थना को सार्थकता के साथ दोहराएं, प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09588204414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।